मुश्किल अल्फाज की वजाहत, सूरत अल अनाम जो है इसका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। अल्हम्द, हम्द, हा, मीम, दाल इसका रूपवर्ड है। इसके मानी में तारीफ भी पाई जाती है और शुक्र भी, यानी प्रेज एंड थैंक, ये दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं। फिर इसके बाद जो है वो खलका, खलका जो है खालाम काफ, और इसके मानी है अंदाजा करना, बनाना, जाला, जाला भी के मानी क्या होते हैं, बनाना, या दिलून, आइन दालाम, ये जवील अजदाद में से है। जवील अजदाद जो है ये उन हरूफ को कहते हैं जिसमें सेम टाइम ऑपोजिट मानी पाए जाते हैं, यानी दो मानी उसके होते हैं। जैसे मसलन यादिलून जो है आइन दालाम, इसके मानी है अदल करना यानी इंसाफ करना और बे इंसाफी करना, दोनों मानी इसमें है। तीन, यही इसका रूट वर्ड है तोए या नून, मट्टी से है ये, मट्टी के मानी में है ये लफ्ज मट्टी। फिर है मुसम्मन, मुसम्मन आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, क्या है इसका रूट वर्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह, सीन मीम वाव, और इसी से इस्म भी है और मुसम्मन क्या मानी है इसके, के जैसे कोई चीज जो है उसको मुकर्रर कर दिया जाए। तम तरून, मीम राया, शक के लिए कुरान में छह लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, और आप देखें कि मैंने क्या कहा कि शक करना, इसके लिए कुरान में कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए, छह, लेकिन उन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है, और जैसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं ना इस तरह से, जैसे शक है इसके क्या मानी है कि जैसे दो थिंकिंग है, दो नजरियात हैं, उनमें से किसी एक को कम इल्मी की बिना पर जो है वो तरजीह ना दे सकना, दो नजरियात हैं और उनमें से किसी एक को, इल्म कम है आप किसी के पास भी और वो उनमें से किसी एक को जो है वो तरजीह नहीं देता। दूसरा है शुबा, कि दो चीजें सेम है, उन ऐसी मिलती जुलती हैं कि शुबा पड़ जाए, समझ नहीं आती कि इसमें से जो है वो यानी कौन सी चीज बेहतर है, कि दो चीजें आपस में जब सेम है तो उसमें तमीज ना कर सकना, फैसला ना कर सकना, शुबा पड़ना। इसी तरह मिरिया, यहाँ पे मिरिया लफ्ज जो है ये इस्तेमाल हुआ है, और इसके मानी होते हैं निचोड़ना, मसलना, जैसे इन तरल लबन, इन तरल लबन मानी क्या है, इसने थन से दूध निचोड़ा, जैसे गाय का थन होता है ना उसमें जिससे दूध निकालते हैं, तो उसने थन से दूध निचोड़ा। तो मुराद क्या है कि जैसे आप दूध जब निचोड़ते हैं तो ऐसे मसलते हैं ना उसको, तो इसी से ये लफ्ज उधार के मानी लेकर बहस और झगड़े के लिए इस्तेमाल होने लगा। जैसे दूध जब थन से निकाला जाता है तो बार बार उसको मसला जाता है, बार बार उस पर जोर दिया जाता है, तो फिर थन से दूध गाय के या बकरी के थन से या भैंस के थन से दूध जो है वो निकलता है, तो बात को जो है वो बार बार उस किसी चीज पर बात करना और जो है वो शक का पहलू निकालना, ऐसी चीज में शक का पहलू निकालना जिसमें शक करने की कोई गुंजाइश भी ना हो, ठीक है ना, तो शक निकालना। तो इस तरह ये लफ्ज जो है ये शक के लिए इस्तेमाल होता है। इससे मुराद क्या है कि कोई शक जो कि बहुत बातें करता है, कटहुजतियां करता है, बहस करता है, और किसी ऐसी बात में शक का पहलू निकाले जिसमें शक का पहलू निकालने की कोई गुंजाइश भी ना हो। फिर आगे अभी आप एक लफ्ज पढ़ेंगे आयत 9 में, इसी हमारे यहाँ सूरत अलनाम में आयत 9 में ललबसना, तो लबसा मैंने आपको बताया भी था कि जैसे जिस्म पर लिबास पहना दिया जाता है तो असल चीज छुप जाती है, तो क्या है कि दो नजरियात या दो चीजों को आपस में खलत मलत कर देना, उनको आपस में मिक्स कर देना कि असल हकीकत जो है वो छुप जाए, तो लबासा, किसी को हकीकत को छुपाकर किसी को शक में मुब्तला कर देना। मरीज, मरीज भी एक लफ्ज है, मरीज का क्या मतलब होता है कि दो चीजों का या दो नजरियात का, दो थिंकिंग का आपस में गुटमुट हो जाना, मिक्सअप हो जाना। जैसे आपने कभी ब्रांचेस देखी हो किसी ट्री की, किसी दरख्त की शाखें, वो आपस में एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ये पता ही नहीं चलता कि असल कौन सी है, है ना। तो मिक्स हो जाना किसी चीज का, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और छठा लफ्ज जो कुरान ने शक के लिए इस्तेमाल किया है वो रैब। आपने सूरत अल बकरा के आगाज में भी पढ़ा, तो रैब ये भी शक को कहते हैं। ऐसे शक को कहते हैं कि जिसमें इंसान को इस्तराब हो, खलजान हो, एक बेचैनी हो, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, तमतरून। फिर इसके बाद है आयत नंबर 3 में तकसिबून, कसबा, काफ सीम्बा। कसबा के मानी क्या होते हैं, कमाई करना, कोई काम करना, कोई भी काम करना जिससे इंसान नफा चाहे। कमाई अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, यानी उसका नफा जो है, जन्नत भी किसी को मिल सकती है और फिर जहन्नुम भी। आयत 4 में लफ्ज है मोरिदीन, ऐन राद द्वाद, इसके मानी है किसी चीज को किसी के सामने पेश भी करना, और अगर अन आ जाए साथ, ये अन की प्रेपोजिशन है, अन हा मोरिदीन, जब अन आ जाए तो इसके माने क्या है, इग्नोर करना, पहलू तही करना, रुख मोड़ लेना। और वैसे तो ऐन राद द्वाद चौड़ाई के लिए, अर्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयत 5 में अम्बाऊ, इसका रूपवर्ड क्या है, नून बा हमजा, और ये बड़ी खबर को कहते हैं। वैसे कुरान में खबर के लिए जो है वो खबर का लफ्ज भी आता है ना, और इसके अलावा अम्बा नबी, बड़ी खबर देने वाला, और कयामत के लिए भी कहा सूरत नबा, यानी बड़ी खबर जो है वो, उसके बारे में लोग जो है वो बात करते हैं। फिर है यस्ताज़ेऊन, यस्ताज़ेऊन का रूटवर्ड क्या है, शाबाश, हाजा हमजा, और इसके मानी क्या है, मजाक करना। और वैसे यूं देखें तो मजाक जो है इसके लिए एक तो यही लफ्ज है यस्ताज़ेऊन हाजा हमजा, यानी किसी का अंदरूनी तौर पर मजाक उड़ाना, खिलाफ अकल समझ कर किसी आदमी का उसके किसी अमल पर मजाक उड़ाना जो उसे हुआ भी ना हो। और एक और लफ्ज भी मजाक के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है, मस्खरापन का, सखरा, सीन खारा। इसमें जब मजाक उड़ाया जाता है ना, जैसे किसी को हकीर समझना, किसी को जलील समझना, इसमें जिल्लत और हकारत का पहलू जो है वो पाया जाता है, किसी का ऐब बयान करके उसका सखरा करना उसके साथ, यानी उसको बुरा समझना, उसको जलील समझना। तो एक यस्ताज़ेऊन, इसके माने भी मजाक करना है, और दूसरा है सखारा, इसके माने भी मजाक करना है। दोनों में क्या फर्क हुआ, इस्तहज़ा किसी चीज को खिलाफ अकल और ऐब समझकर मजाक उड़ाना, उसके अंदर कोई ऐब ना भी हो, और ऐसे किसी के किसी भी काम पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देना, लेकिन अगर सखर आएगा तो ये उससे ज्यादा बुरी बात है। इसमें क्या है, किसी के ऐब बयान करके, यानी ऐब जो उसके हैं उसको बयान करके उसको जलील और हकीर समझकर उसका मजाक उड़ाना। फर्क समझ आया दोनों में, ये आप पढ़ेंगे भी। फिर है कर्न लफ्ज, कर्न लफ्ज जो है ये एक चीज को दूसरी के साथ बांधना और मिलाना, और कर जो है उस रस्सी को भी कहते हैं कि जिसके साथ दो या ज्यादा ऊंटों को जो है वो बांधा जाए। इसके साथ ही कर्न का लफ्ज जो है इस जमात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो एक वक्त या एक जमाने में पाई जाती हो। क्यों, एक वक्त में जो लोग हैं तो वो भी जैसे इकट्ठे हैं तो कर्न कहते हैं उनको, और एक जमात उनका अकीदा उनको इकट्ठा कर रहा है, जो उनके नजरियात हैं, तो उसको भी कर्न जो है वो कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसके मानी कोई एक तवील जमाने तक कोई रहे तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जमाने के एक तवील हिस्से को भी कर्न कहते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि 10 साल से लेकर 100 साल तक। वैसे तो मुख्तलिफ अकवाल हैं, कोई इसे कम भी कहता है, लेकिन हमें हदीस से दलील मिलती है कि 10 से 100 साल तक अगर कोई रहे तो कहते हैं कि वो एक कर्न रहा। इस सिलसिले में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن بشر مازنی کو کہا تھا کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے، اور وہ پورے 100 سال زندہ رہے. پھر اسی طرح آپ نے ایک بچے کو دعا دی کہ تم قرن بھر زندہ رہو، تو کیا مطلب ہے کہ وہ پورے پھر 100 سال زندہ رہا. تو اسی طرح اکثر علماء نے حدیث ہے نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کا یہی مطلب قرار دیا ہے کہ ہر قرن کو 100 سال جو ہے وہ مانا جائے، یعنی 100 سال کی مدت. مکناہم، مکناہم جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے میم کاف نون بھی ہے، مکان جگہ کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کاف و نون بھی ہے، یہ بھی جگہ اور مکان کو کہتے ہیں. تو یہاں پر میم کاف نون، مکان، جگہ، مکین، آپ کہتے ہیں نا مکین، رہنے والا، تو رتبے والا. اگر اب مکنہ شد آ جائے گی تو مطلب ہے قوت دینا، اختیار دینا، ٹھیک ہے. اور ویسے آپ دیکھیں کونوں مکان، کونوں مکان بھی آپ سنتی ہیں نا لفظ، تو کاف و نون روٹ ہے اس کا، کونوں مکان، اسی سے جگہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر میم کاف نون ہے تو بھی مکان جو ہے اور مکین اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر شد آ جائے تو معنی کیا ہے، مکنہ کسی کو قوت دینا، کسی کو اقتدار دینا، اور نمکن یہی، یہاں بھی اس کا یہی روٹ ورڈ ہے، میم کاف نون یا کاف و نون. مدرارا، میم دال را، مدرارا دال را را، کیا ہے اس کے معنی، دال را را کے بہت برسنے والی بارش. جیسے دودھ بہت زیادہ اگر کوئی اونٹنی دے تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں کہ درن، دودھ کی فراوانی اور زیادہ دودھ دینے والی. تو مدرار کون سی بارش، جو بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے عام بارش کے لیے کیا لفظ ہے قرآن میں، مطر ہے نا، سیب بھی ایک لفظ ہے قرآن میں بارش کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غم ہے نا، کہ غمام، غمام کا لفظ بھی قرآن میں بارش کے لیے ہے، ایسی بارش جس میں بادل آتے ہیں اور وہ سورج کو چھپا دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. اور غم کہتے ہیں نا اس کو، بڑا غم ہے. غم جب دل پر کسی کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کو بعض اوقات چھپا دیتا ہے، یعنی غم اس کو ڈھانپ لیتا ہے کہ خوشی کے اثرات اس پر نظر نہیں آتے نا، اور وہ غم کی کیفیت میں ہوتا ہے. جیسے بادل سورج کو چھپاتے ہیں، اسی طرح جب کسی کو غم لگتا ہے تو اس کی وہ خوشی کو چھپا لیتا ہے. تو غم کیا ہے، کور کر لینا، لیکن یہ بارش کے لیے آتا ہے کہ بارش سے پہلے بادل آئے جس نے سورج کو چھپا لیا. تو بہرحال بارش کے لیے ہمیں مختلف لفظ ملتے ہیں. یہاں مدرارا کے معنی کہ بہت زیادہ بارش، تیز بارش، مسلسل جو ہوتی ہے، خوب بارش. پھر اس کے بعد ہے وہ انشانا، انشانا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون شین حمزہ، اس کے معنی کیا ہے، اٹھانا، پروان چڑھانا. آخر، آخر دوسری کو کہتے ہیں، اگر آخر ہوتا خا کے نیچے زیر ہوتی تو آخری. پھر ہے قرطاس، قاف را تو سین. قرآن میں کاغذ کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو یہی ہے قرطاس، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لکھی ہوئی تحریری چٹھی، یعنی لکھی ہوئی کوئی بھی تحریر، کوئی لیٹر، یا کوئی بھی ایسی ریٹن چیز جو کئی پیجز پر ہو، کئی اوراق پر ہو، یا کئی صفوں پر ہو، یعنی کچھ تھوڑے صفحے ہوں یا زیادہ، لیکن لکھی ہوئی کسی بھی رائٹنگ کو تحریر کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ دراصل کاغذ کی وہ ابتدائی شیپ، جو رف سی شیپ تھی نا، جو بالکل شروع میں جب کاغذ بنا، اور یہ بنایا کس نے تھا، ایجپشن پیپل نے، مصریوں نے اس کو بنایا تھا. اور کہتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت جو ہے یہ کاغذ جو تھا، یہی کاغذ دستیاب تھا. اور اس کے علاوہ پھر یہ اس کے لیے ایک مشہور، جیسے مشہور ہو گیا کہ کرتاس ابید، ابید کس کو کہتے ہیں، سفید، اور کرتاس لکھی ہوئی. تو کوئی بھی ایسا معاملہ جس کے متعلق رپورٹ بڑی واضح ہو اور تحقیق کر کے سامنے آئے، تو کہتے ہیں کہ اس کی رپورٹ تو کرتاس ابید ہے، یعنی کرتاس ابید اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہائی لیول کی، جیسے محاورے کے طور پر، اور اہم معاملے کے متعلق किसी वाजे और मुकम्मल रिपोर्ट को कहते हैं जो शाया भी हो जाए, तो कट्टा से अबियद। और दूसरा लफ्ज जो है रक है, रा काफ काफ, ये कागज के लिए दूसरा लफ्ज है और इसके मतलब है पतला होना, नरम, रकीक, दिल की नरमी के लिए आता है ना कि वो रकीकुल कल्ब है, तो रक। तो हमें क्या पता चला, कागज जो है ऐसा कागज जिस पर लिखा जा सके, और रकीक ऐसा कागज जो नरम हो, बहुत ही सॉफ्ट हो। फलमसूहू, लाम मीम सीन, लम्स जो है हाथ या उंगलियों से किसी चीज को छूना, टटोलना, खा वो चीज मिले या ना मिले, लम्स। इससे मिलता जुलता एक और लफ्ज है मस, मीम सीन सीन, मस टच करना, यानी किसी के साथ जो है वो जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो लग जाए, उसके लिए भी, यानी जिस्म के किसी हिस्से के साथ किसी चीज का लगना, तो मस है। लमस क्या है, हाथ की उंगलियों से किसी चीज को टटोलना और उसको छूना। फिर आप देखें आयत 9 में है ललबसना, ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, है ना, अभी मैंने शक के साथ ये आपको बताया है कि असल चीज को गडमड कर देना। फिर आप देखें इस तौजिया, इसका रूट वर्ड क्या है, हाजा हमजा, शाबाश। आगे है फहाका, हाका जो है इसका रूट वर्ड है हा या काफ, और हाका जो है किसी पर मुसीबत, आफत, अजाब का नाजिल होना जिससे वो घिर जाए, बुरे काम का बुरा अंजाम, ये लफ्ज बुरे मानों में भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो आप देखें कि घेरने के लिए अहाता लफ्ज भी है, मुहित, अहाता, तो ये क्या होता है किसी चीज को हिफाजत के लिए घेरना, लेकिन ये जो हाका है ना, घेरा तो जा रहा है लेकिन अजाब के लिए घेरना, यानी अजाब आया और उसने, अजाब ने उनको घेर लिया। अब आप देख लें कि सखेरू, सखेरू भी आ गया, क्या है इसके मानी सखेरू, मजाक उड़ाना, यानी किसी को हकीर और जलील करने के लिए उसके ऐप पर उसका मजाक उड़ाना। तो आपने मजाक के लिए आज कितने लफ्ज पढ़े, वैसे तो 6 आपने पढ़े, लेकिन इन आयात में कितने लफ्ज आए हैं, 2, कौन कौन से हैं, आप सब लोग नहीं बात करें, बच्चों से पूछते हैं कौन कौन से लफ्ज आए, यस ताजे ऊन, शाबाश, और दूसरा कौन सा है, सखेरू। और आपको फर्क समझ आया दोनों में क्या फर्क है मजाक उड़ाने में, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी आयत जो है वो क्या है, कि कई फकाना आकिबतुल मुकज्जिबीन, उसका आखिरी हिस्सा है, तो मुकज्जिब काफ जालबा, कज़िब झूठ के लिए आता है, और अगर जाल पर शब्द आ जाए तो झुटलाना, डिनाय करना, एक तो है ना झूठ बोलना, और एक ये कि हकीकत को झुटला देना।